Dear students, I'm sure you might have gone through the previous case audio lecture on P.D. Gupta versus Ram Murthy. Some of the students are asking me to discuss cases in Hindi language, or if not possible, Hindi plus English, that is combination of both languages. I understand that DULLB course runs in both languages. Many students are comfortable with Hindi language only. Keeping into mind this concern, I will try to give my lectures now onward in both languages simultaneously, that is Hindi plus English, whatever it may be. Now the next case that we are going to discuss is T.C. Mathai versus District and Session Judge Thiruvananthapuram. Just please open your case material. You will find it in the Part B, Professional Ethics, and D section, Cases on Professional Misconduct. You will find out this case, T.C. Mathai versus District and Session Judge Thiruvananthapuram. I'm giving you a few seconds so that you might open your case mat. Okay, see, before we go through this case, let me give you a gist of this case, particularly what this case is related to. This case postulates a legal proposition whether any person who is not enrolled as an advocate can appear before the court in any particular case. If yes, then what is the procedure? Whether it is mandatory for the courts to grant the permission? Whether the court has first to satisfy itself about the efficacy of the person? When an advocate needs no permission from the court, why Parliament has fixed such a filter in the definition of term pleader given under Section 2Q of the CRPC? These are certain questions which will be answered in this case law. देखिए इस केस के अंदर में एक लीगल प्रपोजिशन प्रपाउंड होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो एडवोकेट नहीं है, क्या वो कोर्ट के सामने किसी केस में अपीयर हो सकता है या नहीं। मान लीजिए मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि आप मेरे बिहाफ पर इस केस में अपीयर हो जाइए, एंड इफ यू आर नॉट ए लॉयर तो क्या आप उस केस में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और क्या ये अगर मान लीजिए मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है तो क्या आप कोर्ट के लिए मैंडेटरी है टू ग्रांट द परमिशन, या फिर कोर्ट को खुद अपने आप को सेटिस्फाई करना जरूरी है अबाउट द एफिकेसी ऑफ द पर्सन कि दिस पर्सन इज एफिशिएंट और नॉट, यू कैन से वेदर दिस पर्सन विल हेल्प द कोर्ट और नॉट, और हो सकता है कोर्ट उस चीज के लिए आपको परमिशन ग्रांट करे या रिफ्यूज करे। एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जब किसी एडवोकेट को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है टू अपियर इन द कोर्ट, तो कोर्ट ने, तो पार्लियामेंट ने ये एक प्लीडर की डेफिनेशन जो दी गई है सीआरपीसी में सेक्शन 2Q में, उसके अंदर एक फिल्टर क्यों इम्पोज किया है कि एनी अदर पर्सन यू कैन से, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू कैन से, व्हाई दिस इज गिवन सच ए फिल्टर एट दैट टाइम, राइट? सो नाउ लेट अस गो थ्रू दिस पर्टिकुलर केस, टीसी मथाई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तिरुवनंतपुरम। एज आई टोल्ड यू कि ये केस जो है बेसिकली इस प्रपोजिशन पे है कि वेदर एनी पर्सन हु इज नॉट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट कैन अपियर बिफोर द कोर्ट इन एनी पर्टिकुलर केस और नॉट, राइट? नाउ लेट अस सी, सी दिस जजमेंट इज डिलीवर्ड बाय जस्टिस के टी थॉमस। लेट अस सी द पैरा टू, पैरा टू एंड पैरा थ्री narrates the facts of the case. Facts diye hue hain iske andar mein. Let us see the para 2. The appellant claims to be the power of attorney holder of a couple now living in Kuwait. He sought permission of the session court Thiruvananthapuram to appear and plead on behalf of the said couple, who are arrayed as respondents in a criminal revision petition filed before the said session court. They will be referred to as the respondent couple. But the session judge declined to grant permission, as the request for such permission did not emanate from the respondent couple themselves. Thereupon, द अपीलेंट मूव द हाई कोर्ट ऑफ केरला अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इश्यूएंस ऑफ ए डायरेक्शन टू द सेशन जज कंसर्न्ड टू ग्रांट द परमिशन सॉट फॉर. ए सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिस्ड द ओरिजिनल पिटीशन अगेंस्ट विच द अपीलेंट फाइल्ड अ रिट अपील विच टू वॉज डिसमिस्ड बाई ए डिविजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट. दिस इज हाउ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. देखिए इसके अंदर में अपीलेंट ने एक कपल के लिए अपियर होने की परमिशन मांगी कोर्ट से. द कपल वॉज लिविंग इन कुवैत तो ही आज द सेशन कोर्ट ऑफ द तिरुवनंतपुरम टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द सैड कपल. और लेकिन सेशन कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को इस को ग्रांट करने से डिनाई कर दिया इस ग्राउंड पे कि ये जो परमिशन है वो रिस्पोंडेंट कपल की तरफ से नहीं आई है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या परमिशन रिस्पोंडेंट कपल की तरफ से आनी चाहिए या आप सीधा किसी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर भी कोर्ट में अपियर हो सकते हैं नहीं हो सकते. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की एंड अगेन इट वॉज डिसमिस्ड. और उसके बाद फिर एक रिट अपील फाइल की विच वॉज अगेन डिसमिस्ड बाय द डिविजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट. नाउ सी द पैरा 3. अनडेटर्ड बाय द सक्सेसिव सेटबैक इन सिक्योरिंग ए राइट ऑफ ऑडियंस द अपीलेंट ट्रेवल्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द सदरन एंड ऑफ द कंट्री राइट अप टू द नेशनल कैपिटल टू पर्सनली आर्ग्यू बिफोर द एपेक्स कोर्ट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू प्लीड फॉर द रिस्पोंडेंट कपल इन द सेशंस कोर्ट. वी हर्ड द अपीलेंट इन पर्सन दो वी आर स्टिल नॉट अनेबल टू अप्रिशिएट वाई ही इंस्टेड ऑफ इनकरिंग सो मच एक्सपेंसिस एंड स्ट्रेन डिड नॉट एडवाइज द रिस्पोंडेंट कपल टू एंगेज ए कपल फॉर ए काउंसिल फॉर प्लीडिंग देयर कॉज बिफोर द सेशन कोर्ट. हाई कोर्ट तक भी उनकी एप्लीकेशन डिसमिस होने के बाद में दैट पर्सन मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज सरप्राइज्ड कि इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग द कपल टू एंगेज ए काउंसिल फॉर प्लीडिंग वाई ही हैज इनकर्ड सो मच एक्सपेंसिस एंड स्ट्रेन. सदरन एंड से कंट्री के आना कैपिटल के अंदर में इट देर इज ए ह्यूज एक्सपेंसिस यू कैन से और इतना स्ट्रेन लिया जाता है स्टिल दैट पर्सन ट्राइड टू डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस केस. कम टू पैरा 4. सी द क्वेश्चन दैट इज रेज्ड इन दिस केस इज बेसिकली फ्रेम्ड यू कैन से और यू कैन से द इश्यू इज फ्रेम्ड इन दिस केस. द क्वेश्चन हैज बीन पोस्टुलेटेड बिफोर अस इन पैरा 4. सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग. The issue is before us. Now the C para 4. The appellant during the course of his arguments referred to a commentary on criminal law to support his contention that a power of attorney holder has all the powers to act on behalf of his principal. We would assume that the respondent couple would have executed an instrument of power of attorney empowering the appellant to act on their behalf. Can he become a pleader for the respondent couple on the strength of it? This is the issue before us. Appellant ne ek criminal law ki commentary ko support mein apni contention di ki power of attorney jiske paas mein hai, the power of attorney holder ke paas sari powers hain to act on behalf of his principal. Assume karte hain ki respondent couple ne unko ye power of attorney di hai. Now the question before is, the issue before is ki kya power of attorney ki strength ke basis pe any person can become the pleader of this respondent couple. See para 5. Section 300. In para 5, let us discuss some sections of CRPC, what it says about a pleader or how it is defined. Section 303 of the CRPC, it entitles a person to the right of being defended by a pleader of his choice when proceedings are initiated against him. Pleader is defined in section 2Q. Pleader says, pleader means a person authorized by or under by any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings. Now see the para 6. Here we can say that there are in this para 6 it is again very important which will decide whether what are the kinds of pleaders you can say. Para 6, डेफिनेशन एनवलप्स टू काइंड्स ऑफ प्लीडर्स, दो तरीके के प्लीडर्स के बारे में बात करती है आपकी डेफिनेशंस। अगर हम आपकी बात देखें, प्लीडर की डेफिनेशन को हम दोबारा देखें, इट मींस ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो हेयर इन पैरा 6, द डेफिनेशन एनवलप्स टू काइंड्स ऑफ प्लीडर्स विद इन इट्स एम्बिट्स। द फर्स्ट रेफर्स टू लीगल प्रैक्टिशनर्स हु आर ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस लॉ एंड द सेकेंड रेफर्स टू एनी अदर पर्सन। If it is the latter, its essential requisite is that, if means if we are talking about the any other person, essential requisite is that such person should have been appointed with the permission of the court to act in such proceedings. It means court ki permission jaruri hai, agar koi bhi person other than the lawyer, he wants to represent in that case. This is in tune with section 32 of the Advocates Act 1961. Which empowers a court to permit any person who is not enrolled as an advocate to appear before it in any particular case. Last line is very important of para 6. But if he is to plead for another person in a criminal court, such permission should be sought for by that person. That person means the person who wants to appoint another person to plead. लास्ट लाइन देखिए आपकी ये कहती है कि अगर कोई पर्सन किसी क्रिमिनल केस के अंदर में, किसी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में प्लीड करना चाहता है तो उसके लिए परमिशन चाहिए आपको उस पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर केस पेंडिंग है और फाइल किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है। कम टू पैरा 7, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, this is particularly a case of 2005. This has been quoted, which is not written in your case mat. I will let you know. Para 7 says, it is not necessary that the pleader so appointed should be the power of attorney holder of the party in the case. See, this line is important. Jaruri nahi hai ki pleader jo hai, wo power of attorney holder hi ho. It is not necessary that the pleader so appointed should be the power of attorney holder of the party in the case. What seems to be a condition precedent is that, what is important is that his appointment should have been preceded by a grant of permission of the court. Court ki permission compulsory hai. It is for the court to consider whether such permission is necessary in the given case and whether the person proposed to be appointed is capable of helping the court by pleading for the party. For arriving at proper findings on the issues involved in the case. जरूरी नहीं है कि जो person appoint किया जा रहा है, he should be a power of attorney. What is compulsory is, compulsory क्या है? कि court की तरफ से उसको permission मिली हो. Court सारे factors को consider करेगा कि जिस person को appoint किया जा रहा है, whether that person is capable of helping the court or not, you can say. Now here you can mention name of the case where it was decided. Just note down, Jimmy Jahangir Madan versus Bolly, B-O-L-L-Y, Bolly, Kariyappa, C-A-R-I-Y-A-P-P-A, Hindley, H-I-N-D-L-E-Y, Jimmy Jahangir Madan versus Bolly, Kariyappa, Hindle, AIR, 2005, SC, 48. Let us see para 8. See, under para 8, some important observations are made by Honorable Supreme Court regarding the working of the courts on the criminal justice system. Para 8, the work in a court of law is a serious and responsible function. The primary duty of a criminal court is to administer criminal justice. Any lax or wayward approach, if adopted towards the issues involved in the case, can cause serious consequences for the parties concerned. It is not just somebody representing the party in the criminal court who becomes the pleader of the party. In the adversary system, which is now being followed in India, both in civil and criminal litigation, it is very necessary that the court gets proper assistance from both sides. This is the observation गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर पैरा 9. सी पैरा 9 इलेबोरेट्स द रोल ऑफ ए लॉयर एंड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली इट डिस्कसेज सेक्शन 33 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961. लेट अस सी पैरा 9. लीगली क्वालिफाइड पर्सन्स, दैट इज लॉयर्स, लीगली क्वालिफाइड पर्सन्स हु आर ऑथोराइज टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट बाय द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द स्टैट्यूट कैन अपियर फॉर पार्टीज इन द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट देम. नो पार्टी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट टू अपॉइंट सच पर्सन्स टू रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट. लॉयर को अपॉइंट करने के लिए किसी भी पार्टी को कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट confers a right on every advocate whose name is entered in the role of advocates maintained by a state bar council to practice in all the courts in India, including the Supreme Court. Section 33 says that no person shall be entitled to practice in any court unless he is enrolled as an advocate under that act. Every advocate so enrolled becomes a member of the bar. The bar is one of the main wings of the system of justice. See, last lines are important of this para 9. An advocate is the officer of the court and is hence accountable to the court. Efficacious discharge of judicial process very often depends upon the valuable services rendered by the legal profession. So it is up to the court to see whether the permission should be granted to any other person other than the advocate, after arriving at proper findings on the efficacy of the person. But when a person who is enrolled as an advocate, there is no need to get the prior permission of the court to appoint such person to represent the case of the party. Now let us see para 10. Again, it is very important. It lays down the procedure of appointment of any person as pleader who is not legally qualified person. We are concerned with this particular point in this case. So, किसी other person को अगर हमें advocate के तौर पे appoint करना है, अपना pleader appoint करना है, तो उसके लिए क्या procedure हमें follow करना होगा? This is para 10. But if the person proposed to be appointed by the party is not such a qualified person, the court has firstly to satisfy itself whether the expected assistance would be rendered by that person or not. The reason for Parliament for fixing such a filter in the definition clause, section 2Q of the code, that prior permission must be secured before a non-advocate is appointed by the party to plead his case in the court, is to enable the court to verify the level of equipment of such a person for pleading on behalf of the party concerned. Para 10, again it is important. It says कि अगर कोई भी person, if you wish to appoint that person as your pleader, जो कि advocate नहीं है, तो court, सबसे पहले court अपने आप को satisfy करेगी कि क्या जो assistance court को चाहिए, court को जो एक advocate से assistance मिल सकती थी, क्या वो उस दूसरे person से मिल सकती है या नहीं मिल सकती है. और ये जो reason parliament ने जो इसको fix किया है, इस डेफिनेशन के अंदर में 2Q के अंदर में ये रीजन डाला है कि प्रायर परमिशन मस्ट बी सिक्योर्ड, कोर्ट से परमिशन लेनी जरूरी है बिफोर ए नॉन एडवोकेट इज अपॉइंटेड टू प्लीड हिज कॉज इन द कोर्ट, वो इसीलिए दी गई है ताकि कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, कोर्ट इस चीज को वेरीफाई कर ले कि जो सामने वाले पर्सन है क्या वो एफिकेशियसली अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकता है नहीं कर सकता है, लीगल प्रोफेशन की जो वैल्यूएबल सर्विसेज हैं वो उनको डिस्चार्ज कर सकता है या नहीं कर सकता है. पैरा 11, अगेन इट सेज देर इज वन केस लॉ इन विच जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर मेड सम ऑब्जर्वेशंस. इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. पैरा 11, वी आर कृष्णा अय्यर जस्टिस हैज ओकेजन टू डील विद अ सिमिलर मैटर व्हाइल कंसिडरिंग ए प्ली like this in a chamber proceeding in the Supreme Court. In that case, a party sought permission to be represented by another person in a criminal case. Learned judge then struck a note of caution in the following terms in Harishankar Rastogi versus Girdhari Sharma. This is the name of the case where he made some observations. Harishankar Rastogi versus Girdhari Sharma, AIR 1978, SC 1019, हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरधारी शर्मा, AIR 1978, SC 1019. What he made the observation? He says, if the person who seeks to represent has poor antecedents or irresponsible behavior or dubious character, the court may receive counterproductive service from him. Justice may fail if a knave were to represent a party. Judges may suffer if quarrelsome, ill-informed, or blackguardly or blockheadedly private representatives filing arguments at the court. Likewise, the party himself may suffer if his private representative deceives him or destroys his case by mendacious or meaningless submissions and with no responsibility or respect for the court. Other situations, settings, and disqualifications may be conceived of where grant of permission for a private person to represent another may be obstructed, even destructive of justice. हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरधारी शर्मा के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक चेतावनी दी कि अगर हम इस तरह से नॉन लॉयर्स को, अगर हम इसके अंदर में नॉन लीगली क्वालिफाइड पर्संस को अगर हम परमिशन देंगे तो उससे क्या हो सकता है। अगर किसी पर्सन को हम परमिशन दे देंगे जिसकी बहुत पुअर नॉलेज है लॉ के बारे में या उसका बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, तो कोर्ट हो सकता है उससे काउंटर प्रोडक्टिव सर्विस मिले, उसको कोर्ट को उससे उल्टा नतीजा मिले, जस्टिस फेल हो सकता है, जजेस को भी उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सामने वाले पार्टी का नेचर क्वरलसम हो, ना उसको ज़्यादा कुछ मालूम हो, ब्लॉक हेडेड हो वो, और इस तरह से अपनी फाइलिंग्स करे और आर्ग्यूमेंट्स को जिससे कि पार्टी को खुद उसके केस में नुकसान हो सकता है और वो उस पर्सन को डिसीव भी कर सकता है। इस तरह से उन्होंने एक चेतावनी जारी की इस केस के अंदर में कि पहले इन सारी चीजों को सोच लेना चाहिए बिफोर परमिटिंग ए नॉन लॉयर टू प्लेड द केस। नाउ कम टू पैरा 12। द अपीलेंट सबमिटेड दैट ही इज द ड्यूली अपॉइंटेड अटॉर्नी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट कपल बाय वर्च्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड बाय देम एंड ऑन इट्स स्ट्रेंथ ही कंटेंडेड दैट इज राइट टू रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्डेंट कपल इन द कोर्ट वुड बी गवर्न बाय द सैड अथॉरिटी इन द इंस्ट्रूमेंट। यहां पर अपीलेंट की सबमिशन थी कि उसके पास में रिस्पॉन्डेंट कपल की तरफ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी है ड्यूली एग्जीक्यूटेड, और इसलिए उसको परमिशन देने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी उसको ये अधिकार देती है कि वो उन उस पावर ऑफ अटॉर्नी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हैज राइट टू कंटेंड द केस और टू रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्डेंट कपल इन द कोर्ट। नाउ लेट अस सी पैरा 14। इन पैरा 14 इंग्लिश लॉ हैज बीन डिस्कस्ड विच डज नॉट अप्लाई इन सर्टन सिचुएशंस। ऑल्दो इंग्लिश लॉ सेज समथिंग एल्स बट इट डज नॉट, दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इन दिस केस। पैरा 14, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। अंडर द इंग्लिश लॉ एवरी पर्सन हु इज सुई ज्यूरिस, सुई ज्यूरिस मीन्स हु इज इंडिपेंडेंट, एवरी पर्सन हु इज सुई ज्यूरिस हैज अ राइट टू अपॉइंट एन एजेंट फॉर एनी पर्पज वट्सो एवर एंड ही कैन डू सो वेन ही इज एक्सरसाइजिंग स्टेचुटरी राइट नो लेस देन वेन ही इज एक्सरसाइजिंग एनी अदर राइट। इंग्लिश लॉ आपको परमिशन देता है कि आप किसी भी पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, बट दिस कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट दैट द फोरसेड कॉमन लॉ प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई वेयर द एक्ट टू बी परफॉर्म्ड इज पर्सनल इन कैरेक्टर और वेन इट इज अनेक्स्ड टू ए पब्लिक ऑफिस ऑर टू एन ऑफिस इन्वॉल्विंग एनी फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन। लेकिन कोर्ट ने क्या पॉइंट आउट किया कि ये जो इंग्लिश लॉ है इट डज नॉट अप्लाई जहां पर कोई भी ऐसा आप एक्शन करते हैं विच इज अनेक्स्ड टू ए पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस के लिए तरफ जहां आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जहां पर कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स, फिड्यूशरी रिलेशनशिप मीन्स इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट यू कैन से, राइट। तो जहां पर ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं वहां पर आप किसी भी पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं फॉर एनी पर्पस व्हाट्सोएवर। सेक्शन 15 के अंदर में देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे अगर किसी को अपॉइंट कर देंगे तो क्या नहीं हो सकता। तो फिर तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी अक्यूज्ड अगर आपको दे देगा तो बेल होने के बाद में आप उसकी तरफ से अपियर हो सकते हैं। आप रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की जब बात आएगी तो आप उसके बिहाफ पर जाके डिपोज कर सकते हैं। स्टेटमेंट अगर कोई देनी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे आएगा, एक्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। अपियर जब होना है कोर्ट के सामने तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपियर हो जाएगा। किस कोर्ट ने अगर कोई भी क्वेश्चंस आस्क करने हैं तो उसकी जगह पावर ऑफ अटॉर्नी देगा जवाब। और अगर अटेंडेंस की बात है कोर्ट में तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर वहां पर अपियर हो जाएगा। सो द कंटेंशन ऑफ द अपीलेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नो अवेल इन दिस केस। दिस इज वॉट इज रिटन इन दिस पैरा 15 लास्ट लाइन। कंटेंशन ऑफ द अपीलेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑफ नो अवेल इन दिस केस। लेट अस सी पैरा 16। लीगल पोजिशन इन वन केस इज डिस्कस्ड। एम कृष्णमल वर्सेस टी बाला सुब्रमण्या पिल्लई। इन दिस केस सी लेट अस सी पैरा 16। इन दिस कंटेक्स्ट रेफरेंस कैन बी मेड टू ए डिसीजन रेंडर्ड बाय ए फुल बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन एम कृष्णमल वर्सेस टी बाला सुब्रमण्या पिल्लई AIR 1937 MAD 937। एम कृष्णमल वर्सेस टी बाला सुब्रमण्या पिल्लई ए डिसीजन वॉज गिवन इन बाई फुल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन दिस केस। इट सेज दैट व्हेन ए पर्सन हु वॉज द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ अनदर क्लेम्ड राइट ऑफ ऑडियंस इन द हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ए सिंगल जज रेफर्ड थ्री क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड बाई द फुल बेंच ऑफ विच द वन विच इज रेलिवेंट हेयर वॉज वेदर एन एजेंट विद द पावर ऑफ अटॉर्नी टू अपियर एंड कंडक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन द कोर्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज हुआ इस केस के अंदर में फुल बेंच के सामने मद्रास हाई कोर्ट में, कि क्या कोई पर्सन जिसके पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके पास राइट है कि वो किसी के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अपियर हो सके। चीफ जस्टिस बेस्ले ही डिलीवर्ड द जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फुल बेंच स्टेटेड द लीगल पोजिशन एज अंडर। सी पैरा 16 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सम लीगल पोजिशन इज मेड क्लियर इन दिस केस। ही स्टेटेड द लीगल पोजिशन दस। Just note down these lines are important. Last lines of this para 16. An agent with the power of attorney to appear and conduct judicial proceedings, but who has not been so authorized by the High Court, has no right of audience on behalf of the principal. अगर कोर्ट से परमिशन नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज बाय द कोर्ट, देन यू हैव नो राइट ऑफ ऑडियंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आइदर इन द अपीलेट और ओरिजिनल साइड ऑफ द हाई कोर्ट। देर इज नो वॉरेंट वट एवर फॉर पुटिंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन टू ए रिकग्नाइज एजेंट टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट इन द सेम कैटेगरी एज ए वकालत गिवन टू ए लीगल प्रैक्टिशनर। आप उसके इक्वली फुटिंग पे नहीं आते हैं जो एक वकालतनामा दिया जाता है टू ए लीगल प्रैक्टिशनर। दो लेटर मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी विच इज कन्फाइंड ओनली टू प्लीडर्स, दैट इज दोज हु हैव अ राइट टू प्लीड इन द कोर्ट्स। आप ये कंटेंशन नहीं ले सकते कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी तो वकालतनामा है। तो फिर उन जब एडवोकेट को परमिशन दी जा रही है वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे अपीयर होने की, एंड देर इज नो नीड टू गेट द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, तो मुझे ये परमिशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? नो, दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज इट हैज बीन स्टैच्युटली गिवन इन द एडवोकेट्स एक्ट दैट द पर्सन हु इज ऑथराइज बाई लॉ ही नीड नॉट एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। लेकिन अगर कोई नॉन प्रैक्टिस नॉन लॉयर अगर अपियर होता है तो कंडीशन प्रेसिडेंट इज दैट यू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट, अदरवाइज यू हैव नो राइट ऑफ ऑडियंस। नाउ लेट अस सी पैरा 17। इट इज कंक्लूडिंग पैरा एंड मेक द पोजिशन क्लियर इन दिस कंटेक्स्ट। द अफोरसेड ऑब्जर्वेशंस दो स्टेटेड 60 ईयर्स अगो। सी नाउ इट इज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। डिसीजन वॉज गिवन 20 ईयर्स बैक। The aforesaid observations, though stated 60 years ago, would represent the correct legal position even now. Be that as it may, an agent cannot become a pleader for the party in criminal proceedings unless the party secures permission from the court to appoint him to act in such proceedings. आज भी वो position relevant है even after the 80 years कि कोई भी person जो किसी का agent है वो pleader नहीं बन जाता criminal proceedings के अंदर में जब तक कि party जिसने उसको power of attorney दी है जब तक कि वो party किसी court से अपनी court से permission नहीं ले लेती for that particular person. Unless the party secures permission from the court to appoint him to act in such proceedings. The respondent couple have not even moved for such a permission and hence no occasion has arisen so far to consider that aspect. So the appeal is accordingly dismissed. So if we discuss this particular case, there are certain important points that is to be kept into mind which you may note down. The first thing that should be done in this particular situation is the request for such permission should emanate from the party. Request किसकी तरफ से आनी चाहिए? Party की तरफ से जो किसी को power of attorney appoint करना चाहते हैं. The request for such permission should emanate from the party. Second thing that we have observed in this case is an agent cannot appear and become a pleader for the party in criminal proceedings. When it comes to criminal proceedings, an agent cannot appear and become a pleader for the party in criminal proceedings unless the court permits the party to appoint an agent to act in such proceedings. An agent cannot appear and become a pleader for the party in criminal proceedings unless the court permits the party to appoint an agent to act in such proceedings. कोई भी person जो किसी का agent हो party का agent हो वो criminal proceedings में appear नहीं हो सकता जब तक कि court permission ना दे दे उस पार्टी को किसी भी पर्सन को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट करने के लिए तो रिक्वेस्ट इट शुड एमिनेट फ्रॉम द पार्टी. पार्टी कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करेगी. कोर्ट सारी चीजों को देखेगी कि क्या वो पर्सन हेल्प कर सकता है नहीं कर सकता है जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना चाहते हैं. अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तभी कोर्ट आपको परमिशन देगी. अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है इफ इट हैज डिनाइड योर एप्लीकेशन उस सिचुएशन में आप पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी भी पर्सन को अपने केस को प्लीड करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते. डू यू रिमेंबर दैट प्रवीण सी शाह केस दैट वी हैव डन प्रीवियसली. प्रवीण सी शाह वर्सेस के ए मोहम्मद अली 2001. अगेन प्रवीण सी शाह इफ यू हैव यू जस्ट सी दैट पर्टिकुलर केस इट वाज मेंशन्ड इन दैट केसेस. The right to practice is the genus of which the right to appear and conduct cases in the court may be a species. अगर right to practice आपका genus है तो फिर obviously अगर आपको अगर right to practice दिया गया तो court में appear होना आपका अधिकार बन जाता है. But the right to appear and conduct cases in the court is a matter on which the court must have the major supervisory power. This is what was decided in Praveen Shisha case. कि ठीक है आपके पास एडवोकेट का डिग्री है आपके पास अगर डिग्री है तो फिर आप लाइसेंस है अगर आपके पास एडवोकेट होने का तो फिर आप कोर्ट में अपियर होने का अधिकार रखते हैं. लेकिन कोर्ट के अंदर कौन अपियर होगा और किस तरीके से केस को कंडक्ट किया जाएगा दिस इज द राइट ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट मस्ट हैव द मेजर सुपरवाइजरी पावर ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है तो आप किसी भी वे में कोर्ट में अपियर होंगे. Court will see whether it will permit you in that particular case or not. So if it comes to a non-lawyer person, you can say, जो non-legal background से अगर आते हैं और legally qualified person नहीं है, अगर हम उस question की अगर हम बात करें जो इसके अंदर में आया था, can any person become a pleader who is not a legally qualified person? तो इस situation के अंदर में efficacy discharge of judicial process very often depends upon the valuable services rendered by the legal profession. तो इसलिए अगर किसी पर्सन को प्रपोज कर रही है पार्टी कि दिस पर्सन विल अपियर ऑन माई पार्ट, द कोर्ट हैज फर्स्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ वेदर द एक्सपेक्टेड असिस्टेंस वुड बी रेंडर्ड बाय दैट पर्सन और नॉट, यू कैन से। और इसके लिए कोर्ट हर तरीके से इट कैन वेरीफाई द लेवल ऑफ इक्विपमेंट ऑफ सच ए पर्सन फॉर प्लीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टी कंसर्न। इसके लिए कोर्ट हर तरीके से उस पर्सन का जो लेवल है उसको वेरीफाई कर सकती है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।